इसलिए प्रहलाद महाराज जी का शरीर साधारण नहीं था, उसको विष दिया उसके पिता ने, मत हरि नाम करो, माना सांप से कटवाया, विष दिया, पर्वत से गिराए, किंतु वो जैसा कहता है सांप बना रहा। और ये भी नहीं कहा जाए आप हमको क्यों मारते हैं, मैंने क्या गलती किया, तुम दैत्य रूपी वंश के चंदन के वंश में तुम कुठारी के रूप में जन्म ग्रहण, लकड़ी को काटने के लिए वो फरसा या कुठारी चाहिए, किंतु जब तक बेंट नहीं रहेगा तब तक नहीं कटेगा वृक्ष, वो लकड़ी का ही बेंट बनता है, तो लकड़ी लकड़ी को ही काटता है, तो तू ऐसा ही महादुष्ट है, तुम हमारे वंश को छेदन करने के लिए विष्णु का आश्रय लिया, अभी तुमको मारता हूं, तुम्हारी कौन रक्षा करता है, तेरा प्रभु तुम्हारा रक्षा करने वाला कहां है, तो सर्वत्र है, मैं तो नहीं देखता, आप नहीं देखते, किंतु मैं देखता हूं, आपके अंदर में भी वही है, हमारे अंदर में भी वही है, सब जगह खड़क खंभ सब में है, कहां है, इस खंभे में है, हाँ है, बस जब ही उसको मारा वो चूर्ण हो गया, उसमें से प्रभु निकल आए, न मृगो न मनुष्य, निसिंह भगवान के रूप में आए, बोलो निसिंह भगवान, और क्षण मात्र में कैसी रक्षा, दिन में नहीं मरेंगे, रात में नहीं मरेंगे, आकाश में नहीं मरेंगे, पृथ्वी में रसातल में नहीं मरेंगे, घर के अंदर नहीं, बाहर नहीं, जल में नहीं, स्थल में नहीं, किसी मनुष्य से नहीं मरेंगे, कोई ब्रह्मा के बनाए हुए सृजन के हुए प्राणी से नहीं मरेंगे, भगवान ने किया किया एक ही क्षण में, न दिन में न रात में न किसी महीने में मल मास के दिनों में, ऊपर न नीचे इस पर रख लिया, घर के बाहर नहीं भीतर नहीं देहली पर, दिन में नहीं रात में नहीं शाम को समय में गोधूली के लगने, और किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, नखों से ही उसका काम तमाम करके नाड़ी को यहां पर लगा लिया, विकराल रूप धारण कर, लक्ष्मी और ब्रह्मा और शंकर जी डर के मारे भगे, प्रहलाद को बोला जैसे अरे पिताजी की क्रोध को शांति करो, बस वो दौड़ता हो गया पिताजी की गोदी में, पिता मैंने नृसिंह जी भगवान इतना विकराल रूप, उसे कोई डर नहीं लगा, उनकी गोदी में झट बैठ गया, और प्रभु का क्रोध आंसुओं के रूप में बदल करके आंसू झरने लगे, और उसे लाड प्यार करने लगे, बोले बेटा तुम्हारे को रक्षा करने में हमारा विलंब हुआ, तुम हमें क्षमा करो, बहुत विलंब, तुमको बहुत कष्ट भोगना पड़ा ना, तुम वर मांगो इसके लिए, तो हंस करके बच्चा कहने लगा प्रभु मैं बनिया तो हूं नहीं जो बनियागिरी करूं, चार पैसे दिए उसके बदले में नमक दे दिया, मसाला दे दिया, ऐसा नहीं, भगवान का भजन करने वाला व्यवसायी और लाभ और हानि नहीं देखता, वो तो सेवक है, आपकी सेवा मैंने की बस, उसके बदले में आप प्रसन्न हो बस यही चाहता हूं, और कोई चीज नहीं चाहता, हमारे अंदर में मांगने की कोई तमन्ना हो इच्छा हो तो वो दूर कर दो, ये वाह सारा सा, फिर भी तुम कुछ मांगो, नहीं प्रभु आप हमको मत करो, नहीं तुम मांगो तो कहे हमारे पिताजी बहुत अपराध किया आपके चरणों में, आप उसे क्षमा कर दिए, अरे ये तो बहुत पहले हो गया है, वही नहीं उसके कुल में आने वाले किस पीढ़ी के लोगों को हम उतार देंगे, और कुछ मांगो, मैंने क्या मांगे, तो उन्होंने कहा कि ये जगत के लोग आपको आपका सेवा छोड़ करके भजन छोड़ करके बड़े दुखी हैं, आप इन पर कृपा करें और मैं इनके बदले में जन्म जन्मांतर तक मैं दुख भोग करूंगा, नरक में भी जाऊंगा, प्रभु बोले जी मैं हार गया तू जीत गया, हमारी इस लीला कथा को जो कोई सुनेगा सुनाएगा वो जरूर बैकुंठ में जाएगा, नारद जी ऐसे हैं, ये नारद जी की कृपा है। और आगे क्या हुआ, जब कृष्ण लीला जब कृष्ण का जन्म हुआ मैं हो गया जब कृष्ण का जन्म हुआ ना गोकुल में, तो दर्शन करने के लिए गए तो उसे संतुष्ट नहीं हुए, देखा जी इनकी शक्ति भी आई होगी, राधा जी को खोज करने लगे, वृषभानु बरसाना में वृषभानु महाराज जी के यहाँ गए, जैसे तुमको कोई संतान हुई तहा एक बेटा हुआ है, श्रीधाम को दिखलाया, और कोई संतान है, हाँ एक अभी बहुत जल्दी से ही हुई है, एक छोटी सी बच्ची हुई है, मुझे दिखाओ, तो जब गए वहां देखा, अरे ये तो साक्षात लादनी शक्ति कृष्ण की यही राधा जी है, उन्होंने कहा जिसे जरा दधि दुर्बा हल्दी सुपारी ये सब चीजें लाओ, गंगा जल जमुना जल लाओ, और उनको भेज करके बस उनकी स्तव स्तुति करने लग गए, चलाकी से उनको बाहर भेज दिया, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं, साथ ही साथ में ललिता विशाखा की देख करके आश्चर्यचकित हो गए। इतने में राधा जी को दर्शन किया किशोरी रूप में, उनके समस्त सखियों को किशोरी रूप में दर्शन किया, बस एकदम उनका मुख बंद हो गया, आश्चर्यचकित हो गए, मुग्ध हो गए। ललिता जी ने उनको कहा, अरे क्या देखता है, जल्दी से इनसे कुछ स्तव स्तुति करो। तो स्तव स्तुति कैसे करते हैं, भजामि राधम अरविंद नेत्रम, स्मरामि राधम मधुरस्मिताश्चम, बदामि राधम कर्णाभराद्रम, ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। राधा जी की स्तव स्तुति करते हैं। इस तरह से थोड़ी देर के बाद में राधा जी ने उनके तरफ मुस्कान दिया, मुस्कान भर करके देखा और अंतर ध्यान हो। अब वो गए कुसुम सरोवर जहाँ पर थी, राधा कुंड के पास में कुसुम सरोवर है, और वहीं पर रह करके तपस्या करने आराधना कर ले गए राधा जी के नाम। सुनते हैं कि वो राधा नारदी गोपी के रूप में आए, उनके लीला में समझ। कोई कहता है अभी कोई ठीक नहीं, अभी तक पाए कि नहीं उनको, जब लक्ष्मी ही नहीं पाई, इन लोगों के लिए पाना बड़ा भारी कठिन, उद्धव को भी नहीं दिया। तो अभी नारद जी इन सब चीजों को जानते हैं, नारद जी के गुरु शंकर जी हैं, महादेव जी, गोपीश्वर महादेव। नारद जी की कृपा होने से कृष्ण की भक्ति सहज हो जाती है। इतने संसार में भी रहे, प्रहलाद महाराज जी की तरफ रहे, गोपियों जैसे रहे, पांडवों की तरफ रहे, और रह करके कर्तव्य के लिए थोड़ा सा जो कर्म करते हैं भगवान के लिए ही करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब तक जीवित रहे। इसके बाद में भगवान जैसी व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था का लंबन करके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भगवत भजन, और कोई लक्ष्य नहीं है। जब मैं खूब रुपया पैसा कमा लूंगा, होगा क्या, ले जाएगा एक चमड़ी दमड़ी भी ले जाएगा। इसलिए भगवान का भजन करके इस चीज को करने के लिए हम व्यवसाय वाणिज्य कर रहे हैं कि हमारा जीविका का निर्वाह हो, बस इसके लिए। समझ रखो ये मनुष्य जन्म में यदि भजन नहीं हुआ, किसी भी जानवर में अथवा असुर जोनी में देवता कुल में भी जन्म लेने पर नहीं होगा भजन। ये भजन का मूल ये मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर को धारण कर और भगवान की कृपा रूपी संतों की कृपा पाया और अच्छा शरीर है, ये सुजोग मिल करके भी यदि भगवान का भजन नहीं किया, फिर जन्म जन्मांतर बेकार का हो जाएगा, इस चीज को समझो। इसलिए इस मनुष्य जन्म में भगवान का भजन करना ही हमारा कर्तव्य है। भजन माने भगवान का नाम करो, यही नाम करते 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 साधन में ऊपर उठा। आज यहीं तक रहे, सभी लोग प्रसाद लेकर के तब जाएंगे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च सभी मुक्त पुरुष तो नहीं है ना, तो फिर कोई मुक्त ही पुरुष सभी हैं आए हैं हमारे आचार्यों में, तो फिर मुक्त पुरुष ही भजन कर सकते हैं, बद्ध जीव कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हो गया,
बद्ध जीव किस तरह से भजन करते हुए मुक्त होता है ये भी तो देखने के लिए।
हाँ, तो यही राय रामानंद जी ने अपने संवाद में सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु जी ने वो सब चीजें बतवाई है। पहले कृष्ण तत्व का ज्ञान हो, राधा तत्व का ज्ञान हो, जीव तत्व का ज्ञान हो, भक्ति तत्व का ज्ञान हो, फिर साधन में अब लगे। पहले ज्ञान नहीं हुआ तो फिर यदि दूध में दूध सफ़ेद होता है इतना काफ़ी नहीं है, इक्वन का दूध भी इक्वन समझती है, उसका भी तो सफेद होता है। तो यदि गाय के दूध के बदले उसी को देखा जैसे यही दूध है पी लिया तो क्या होगा, मर जाएंगे।
चूना भी सफेद, चूने का पानी,
चूना का पानी है, आटा का घोल दो यही तो अश्वस्थामा को द्रोणाचार्य जी ने खिलाया था, उसी को यही समझता था यही दूध है, क्योंकि पैसा नहीं था, अर्थ नहीं था, जो दूध है गैया नहीं पाल सकते थे जो दूध खिलाए। तो दूध का स्वाद आटा के या चूना से उड़ नहीं होगा, सचमुच में लगना होगा। आ जाओ, कृष्णदास को साथ में ले आई, सब सामान आ गया, बहुत अच्छा। आ जाओ भीतर, आज तुम्हारी बिटिया कहाँ है? किसके दंड इसलिए गुरु जी ने दिया, गुरु दंड होता है, दंड देना मारना पीटना। तुम्हारा यदि वाणी कृष्ण की कथा छोड़ करके ये संसार के लष्टम पष्टम में बातचीत करे तो उसको दंड देना। यदि तुम्हारा माइंड यदि भगवान की कथाओं से और भक्ति से तुम्हारा यदि किसी तरफ में यदि चला गया, एक दंड उसके लिए एक लठिया है, उसमें चार लठियां हैं इसमें, एक मन को दंड देने के लिए
इसमें है चार।
हाँ
पता नहीं,
एक दो तीन चार है,
स्वयं को दंड देने के लिए।
अच्छा,
स्वयं को दंड देने के लिए
चौबीसों घंटा अपने पास में रहे। मन को कभी यदि इधर में गया, मन बड़ा बदमाश है, कब जो निकल गया हाथ से कोई ठीक नहीं। दो बुद्धि मन तन शरीर से, कभी कभी शरीर भी काबू में नहीं रहता, मन यदि उतावला बन जाता है ना तो शरीर को काबू में नहीं, ये भी उसी के साथ में मन बुद्धि की बात नहीं सुनता, जैसे उसको एक दंड। और वचन पर अंकुश नहीं रहने से खुराफात करता है। द्रौपदी जी ने कहा अंधा का पुत्र अंधा होता है, महाभारत युद्ध हो गया। सीता जी ने अपने बात पर अंकुश नहीं रखा, लक्ष्मण जी को कुछ उल्टी सुल्टी कह दी, तो उसके लिए रावण और राम का युद्ध हो गया। इन्हें बात पर अंकुश रहने के, बात बात में वो क्या होता है, बात बात में मचल जाना, बात बात में क्रोध हो जाना, बात बात में एकदम बिगड़ जाना, ये तीनों को तीन। और एक जीवात्मा के लिए, जीवात्मा हम हैं, इसको सब समय भगवान की शरण लेना, यदि नहीं मानता तो उसको भी दंड होगा। इसके प्रति की यह पहला है कि ये तो दंड होगा, इसलिए तन मन वचन को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ये दंड है। इसलिए त्रिकंठी हमारी तन मन वचन, ये तीनों पर कंट्रोल करे तुलसी जी।
हमारी दो ये और देंगे बाद में आप
ले लेना,
दो पहले तो
तीन ही नहीं चाहिए, तीन होने हम लोग सब समय तीन।
हाँ जी, एक बार आपने बताया था कि राधा कृष्ण और जीवात्मा गुरु जी,
वो तो बात की चीज़ें, पहले ये तो कंट्रोल में आए तब भक्ति भगवान और
भक्त
भक्त आराध्य आराधना और आराधना, ये त्रिपुटी कहलाती है तीन के। कृष्ण राधा हमारे आराध्य हैं और मैं आराधक हूँ, और दोनों के प्रति जो भाव हैं सेवा की भावना परस्पर प्रीति, ये है आराधना। ये तीनों के लिए ये तीन चीज।
जी एक बार आपने एक उसमें बोला है राधा कृष्ण पहले एक थे, राधा कृष्ण पहले एक थे जैसे चैतन्य महाप्रभु बाद में आए,
वो कहने के लिए कहा जाता है,
फिर दो हुए फिर एक हुए, इसका तात्पर्य क्या
है?
तत्वतः एक हैं। जब विलास करने की इच्छा हुई, अपने में ही अपने रमण करने की इच्छा हुई, जिसको कहते हैं आत्मा रमण, तो कृष्ण की आत्मा है राधा जी, प्रिय को आत्मा कहा जाता है, तो उनकी आत्मा ही एक स्वरूप इतनी मधुर बनी जो कृष्ण अपने को भी वो आकर्षित कर देती है, ऐसी वो बनी, वो जो भावना थी, और उसके साथ में ही क्रीड़ा करते हैं, इसको कहते हैं आत्म क्रीड़ा। कृष्ण अपनी आत्मा के साथ अपनी खुद रमण करें, बल्कि परछाई के साथ में नहीं, परछाई तो अलग हो गई, ये अपनी आत्मा, इसलिए कृष्ण को आत्म क्रीड़ा कहते हैं। अले तत्वता है, एक है, जब इच्छा हुई, एक आदमी यहाँ पर बैठा है हरे नाम का, कुछ देर तक किया, इसके बाद में जैसे वो बाहर में कौन है क्या है, थोड़ा सा चल लो चला गया, किसी को देख लिया तो दो बातचीत कर लो, रहा नहीं जाता अधिक देर तक, ये मन ही ऐसा है। तो इसलिए प्रभु को भी क्रीड़ा करने की इच्छा होती है,
उनमें आनंद है, प्रेम है। ये प्रेम प्रेम अकेले नहीं होता है, कोई एक होना चाहिए प्रेम का। अपने ही एक प्रेम का पात्र बन गए, एक प्रेमी बन गए, तो ये राधा और कृष्ण के रूप में। फिर राधा जी का भाव और उनका अंग कांति लेकर के वही कृष्ण ही अपने को ढक करके भक्तों के साथ में विलास करने के लिए और जगत में दुर्लभ वस्तु को देने के लिए वही सचिनंदन गौर।
तो अंततः गौरहरी जैसे थे वैसे ही रहे, पहले ऐसे ही थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए वैसे ही थे,
वही है,
वही हैं।
वो राधा कृष्ण के मिलित कण है, मिलित राधा जी का भाव और उसके ऊपर में कृष्ण के ऊपर में कवर्ड है। अभी वहाँ पर जो कुछ दिखाई दे रहा है चैतन्य महाप्रभु के में, वो राधा जी का सौंदर्य ये पीत वर्ण उनका है, स्वर्ण वर्ण। और जो कुछ कह रहे हैं हा कृष्ण हा कृष्ण, ये राधा जी का मूड से कर, और जगत को सिखा रहे हैं यदि कृष्ण का भजन करना है तो इसी मूड से करो, तन्मय होकर के करो। अब जैसे कृष्ण को याद नहीं है जो मैं कृष्ण हूँ, विलाप कर रहे हैं तो राधा जी के भाव से, ऐसे जीव अपने को समझे जो मैं कृष्ण का दास दासी हूँ। अब ये नहीं, ये शरीर नहीं है, और उसी में तन्मय होकर के भजन। उस समय में भजन करते करते ये नहीं होगा जो मैं उनकी पत्नी हूँ, वो हमारे पति हैं, वो हमारी स्त्री है, ये बेटे हैं, ये मेरा घर है, ये स्थूल परिचय भूल करके मैं कृष्ण की दासी हूँ, मेरा नाम यह है, ऐसी सेवा करता हूँ, बस उसी भाव में तन्मय होकर ये भजन करता। यदि सारा एक दिन में ये भाव तनिक भी नहीं आता, एक मोमेंट में नहीं आता, तो अभी भजन का होगा बहुत। खान पान शरीर इसी में हम वो हैं, हमको आज घर में ये नहीं है, खाने के लिए नहीं है तो ये नहीं है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, ये कपड़े अच्छे समाज के लायक अभी फिटनेस में ठीक से नहीं है, हमको वैसे ही फिट बनना पड़ेगा, तो ये सब अभी स्थूल विचार। उनको विचार नहीं है वो लंगोटी पहने हैं कि नहीं है, अभी उनको ज्ञान नहीं है, लंगोटी को निकाल लिया और सिर पर बांध लिया। नित्यानंद जी सुखदेव गोस्वामी को तो उनको पता ही नहीं है, दिन रात डूबे रहते हैं, ये शरीर हमारा स्थूल है और ये मैं हूँ, रहता तो लोग इसको ढकते, ढकने का कोई प्रयोग नहीं। कपिल की मैया देवहूति जी जब प्रेम में एकदम डूब गई और वो चले गए उनको उपदेश दे करके कपिल देव जी अपने वन में, उसमें इनकी ऐसी दशा हो गई दिन रात कृष्ण के विरह में तड़पने लगी, घर से निकल गई, कितने दिनों तो कुछ स्नान ही नहीं किया तो किया नहीं, केस खुल गया, मुक्त हो गया, कपड़े अपने आप गिर रहे हैं, लटक करके चल रहे हैं तो उनको पता नहीं ये कपड़े हमारे लटक गए, पैखाना पेशाब उनको होश नहीं है कब पैखाना हुआ कब पेशाब किया, अभी लगा हुआ है टट्टी कि नहीं लगी हुई टट्टी ना क्या है, अब शरीर में तो टट्टी लगी है तो इसका मतलब है कि आत्मा में भी टट्टी लगी है, उसे उनका कोई संबंध ही नहीं रह गया, इसे बहुत ऊंच खींच ये भजन करने का अंतिम ऐसा होना चाहिए, ये साधन है। हम साधन में अभी कहाँ हैं, अभी साधन ही नहीं आरम्भ, अभी साधन के पहले अभी प्लेटफार्म के बनाने में हम लगे हुए हैं, अभी कहा जाने कब तक ये प्लेटफार्म बने, तब हम कह देते हैं कि नहीं अच्छा ठीक है ये तुम्हारा भजन बहुत अच्छा भजन हो रहा है। राधा जी अफसोस कर रहे हैं कि मैं कृष्ण की कोई सेवा नहीं कर सकी, तो इसी से समझ महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु कहते जी प्रेम ही नहीं, हम मछली की तरफ में अभी तड़प रहा हूँ, अभी मर नहीं गया क्यों,
दुख के समय तो भगवान के ज्यादा नजदीक हो जाते हैं, ऐसा क्यों है, वो अस्थाई होता है, वो समय पे जो होता है,
दुख के समय में जो भगवान का स्मरण होता है वो तो इसलिए कि हमको बचाओ,
पर हम पूरे शरणागत हो जाते हैं उस वक्त के आप ही
नहीं, अब मैं अपने को दे दिया आप बचाइए मत बचाइए, तो इसमें कृष्ण का क्या सेवा हुई, पंखे चल रहे हो कृष्ण को न कि कृष्ण की सेवा के लिए प्रार्थना, जी हे प्रभु आपकी मैं सेवा, उसमें हाय हे कृष्ण रखा दो, बस इसी में लग गया,
मैं तुम्हारा हूं मेरी रक्षा कर,
तो वो कृष्ण का स्मरण अच्छा तो है किंतु भक्ति नहीं है, इसलिए उस समय का नहीं हो ऐसा प्रहलाद महाराज, पिता उनको मार रहा है और सेनाएं मार रही हैं, विष दे रहे हैं और वो तो कर रहे हैं, हरे कृष्ण की सेवा में शामिल। वो उत्तम भागवतों के लिए, कनिष्ठ के लिए तो है ही नहीं है, मध्यम के लिए भी अभी दूर है। ऐसा भजन होना चाहिए।
हाँ तो भजन की
यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग।
एवरी वंस इन अ व्हाइल फ्रेंड वेलास्प्रभु व्हिस्पर्स इन माय ईयर,
आई थिंक ही टेल्स मी आल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग परफेक्टली। जन्मदिन है तो राम किस लिए आए? एक समय नारद जी भगवान की आराधना कर रहे थे, इंद्र को डर हुआ ये हमारे सिंहासन को लेने के लिए ये तपस्या कर रहा है। वो आराधना में और तपस्या में जो क्या अंतर है नहीं समझ सका। क्या अंतर है? आराधना होती है भगवान की प्रार्थना, जिसे कि भगवान अपना प्रेम दे और उनकी प्रेमपूर्वक सेवा कर सके, ये हो गई आराधना। राधा जी का मंत्र से, कृष्ण के मंत्र से, गोपाल मंत्र से, हरि नाम के द्वारा, ये हो गई आराधना। और तपस्या कहते हैं जैसे खाना पीना छोड़ दिया, मंत्र संत्र नहीं है, जीत पर अड़ करके भूख लग रही है नहीं खाऊंगा, चारों तरफ से आग जला दी उसके बीच में बैठ गए एकदम ध्यान लगा, ये सब चीज़ें हैं तपस्या। शौभरी ऋषि की तपस्या है जड़ सुख के लिए जो करते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, उसने आराधना नहीं की, खाना पीना छोड़ करके और ब्रह्मा जी के लिए प्रार्थना कर रहा है कि मेरा शरीर वज्र का हो जाए, अजर अमर हो जाए, इसलिए वो खाना पीना छोड़ करके सांसारिक कष्टों को भी भोग करके, चाहे शरीर चला जाए तो चला जाए, कोई इसको कहते हैं तपस्या। नारद जी आराधना कर रहे थे, भगवान का स्मरण कर रहे थे, लीलाओं का। इंद्र ने सोचा कि ये इसलिए कर रहा है कि हमारा स्वर्ग ये छीन लेगा। जैसे अभी प्रधानमंत्री के लिए और जनता लोकसभा के लिए ये हो रहा है ना
इलेक्शन,
इसमें यही प्रधानमंत्री रहेंगे, कोई है गारंटी? जो सदस्य चुन करके आएंगे 500 के करीब में, वो लोग इलेक्ट करेंगे, उसमें जिसकी पार्टी अधिक रहेगी वो लोग बहुमत से एक किसी प्रधानमंत्री को, तो ये अभी जो प्रधानमंत्री इनका कोई गारंटी नहीं जो होंगे, यदि कांग्रेस बहुमत में आ जाती है तो हो जाएगा, नहीं तो ये गए तो तीनों लोग से गए, इनको कोई एक कौड़ी में नहीं पूछेगा। तो इंद्र सोच रहा है ये जो तपस्या कर रहा है हमारा प्रतिद्वंद्वी है, और ये प्रतिद्वंद्वी है और ये हमारे स्वर्ग को लेने के लिए ऐसा तपस्या कर रहा है, इसलिए सोचा बैठिए इसलिए सोचा कि इसमें कोई विघ्न डालना चाहिए। कैसे विघ्न जाएगा? संसार में सबसे बड़ा विघ्न क्या है? स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री का जो परस्पर अफेक्शन है ये सबसे बड़ा आकर्षण है। किसी भी योनि में हो, कुत्ता और कुत्ती, सुअर सुअरी, गाय बैल, मनुष्य, ये जोड़ों का परस्पर जरूर बचपन से ही कुछ ऐसा आकर्षण होता है, और यदि दोनों में रूप हो और वैसी क्वालिटीज हों, कोई कलाएं जानती हूँ सौंदर्य के साथ साथ, तो और आकर्षण होता है। ब्रह्मा मेनका इत्यादि अस्पराए हैं जिनकी तुलना नहीं है सौंदर्य, और कलाएं ऐसा नृत्य इत्यादि जानती हैं, नचना भी, गला इतना स्वर इतना ठीक है, इसके अतिरिक्त बहुत सी कलाएं जानती हैं, हाव भाव इत्यादि जानती हैं, जो किसी को आकर्षण करने में बाहिर है, जड़ व्यक्ति में भी वो ऐसा उत्पन्न कर देंगे भाव। तो उन्होंने उनको भेजा, नारद जी के पास, नारद जी अपने प्रभु के राम के कृष्ण के चिंतन में बहुत हैं। वो आई, बहुत से हाव भाव किए, गान किए, नाच किए, बहुत से प्रदर्शन किया, बहुत तरह के प्रदर्शन, यहाँ तक कि हाफ नंगे नेकेड भी हो गई, किंतु उसके तरफ उन्होंने देखा नहीं। वो बड़ी लज्जित थी और उनसे क्षमा मांगने लगी। मैं आपको कुछ, आपका ये तप नष्ट करने के लिए मैं आई थी, आप हम पर कृपा करें। अच्छा, उसमें प्रत्यक्ष रूप में हाथ था काम का, कामदेव का। ये कामदेव असल में पराजित हुआ, जब पराजित हो गया तो इन्होंने हंस करके कहा, जैसे इसका प्रभाव हमारे ऊपर में नहीं पड़ेगा, हमारे प्रभु बड़े शक्तिशाली हैं, नारायण हैं, इसलिए हमारे ऊपर में प्रभाव नहीं पड़ेगा, हंस करके तुम रुक जाओ। तो वो जब चले गए तो इनको कुछ अभिमान हुआ, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, क्रोध उनको आ गया, और ब्रह्मा इत्यादि जितने थे वो तो उसके चुटकी बजाते ही गिर गए, और शंकर जी को क्रोध आया, शंकर जी भी स्थिर नहीं रह सके, क्रोध का ना माने क्या, स्थिर नहीं रह सके, किंतु मैंने हंस करके और इसको अजय तुम लोग चले जाओ, इसलिए इनको अभिमान है, अजय मैंने कामदेव को जीत लिया। संसार में ऐसा आज तक शंकर जी भी नहीं कर सके, ब्रह्मा जी नहीं कर सके, और विश्वामित्र इत्यादि की बड़ी बड़ी तपस्वी हैं वो लोग नहीं कर सके जो मैंने आज कर दिया। वो गए शंकर जी के पास, नारद जी, नारद जी के गुरु हैं शंकर जी और पिता है ब्रह्मा, पहले गुरु जी के हैं, गुरु जी ने पहले पिताजी के पास में ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने बड़े आभगत से उनको बुलाया, जो बेटा सब कुशल ठीक है, बहुत ठीक है, आपकी बड़ी कृपा है, मैंने कामदेव को भी जय कर लिया जो किसी ने नहीं किया। तो उनका माथा ठनका जा रही, इसको तो भगंदर हो रहा है, भगंदर जानती है ना सूर्य क्या कहते हैं इसको, ये तो इसका प्राण लेगा, इसकी समय रहते हुए इसकी चिकित्सा होनी चाहिए, अभिमान तो गर्त में बेड़ा कूद चला, इसलिए इसकी रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, देखो ये बात ठीक नहीं, अभिमान करना नहीं चाहिए, तुम अभिमान छोड़ो और यह बात और किसी हमारे अतिरिक्त और किसी से मत कहना, हमसे जो कह दिया कर दिया। किंतु वो कुछ बढ़ चुका था रोग, अब पक चुका था, उसका ऑपरेशन होना जरूरी है, जब पक गया था तो उसको काटो, यदि अभी कच्चा है तो उसको बैठा दो औषधि से, होम्योपैथिक इत्यादि या दूसरे, किंतु ये तो पक गया, इसको तो निकालना है, इसलिए चले गए वो शंकर जी से, गुरु जी आपको प्रणाम है, मुझे सब कल्याण है, तो हाँ सब ठीक है, आपने आपको तो क्रोध आया कामदेव पर, आपने जला दिया और हमने चुटकी बजाते हंसते हुए उनको लौटा दिया, तो तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा कौन है जो ऐसा कर सकता है, इसलिए तुम बहुत धन्य हो कि ऐसा करो। देखो जैसे भी हो, अभी ये बात विष्णु को मालूम ना हो, हमको तो कह दिया, किंतु इनसे रहा नहीं गया, इसके बाद में विष्णु लोक में पहुँचे नारायण के पास में, और वहाँ जाकर नारायण जी को बिना जंत्र में गान करते हुए उनका नारायण श्रीमन नारायण नारायण गान कर रहे थे, भगवान बड़े प्रसन्न होकर उनसे बातचीत करना, कैसे आई तो बहुत दिनों के बाद में भेंट हुई, प्रभु आपकी कृपा है, आपकी कृपा से जो ब्रह्मा जी हमारे पिता न कर सके, हमारे गुरु जी के लिए संभव नहीं था, वो आपकी कृपा से हंसते हुए मैंने उसको कामदेव को, न मैंने क्रोध किया न कुछ, हमको तो ऐसा लगा जी वो बच्चा है अभी, जैसे बच्चे को खिलवाड़ करते हैं मैंने उसको, तुम्हारे समान और कोई भक्त पृथ्वी में नहीं है, और फिर थोड़ा सा साक्षी देकर के बढ़ा दिया। अब उनको प्रसन्न करके थोड़ी देर के बाद में दंडक प्रणाम करके लौट रहे थे, भगवान ने देखा ये नासूर को अभी अब ठीक करना है, चिकित्सा जरूरी अवश्य भागी, नहीं तो ये बढ़ करके इसको रसातल ले जाए, अभिमान ठीक नहीं है, तिना दपी सुनीच होना चाहिए, दीनहीन होना चाहिए भक्त को। जब वहां से उतरे, जहां पर उतरे उसी समय में भगवान ने ऐसी माया प्रसारित की, एक राजा, उसका उसकी एक मात्र एक लड़की, अभी वो 16-17 वर्ष की हुई है, बड़ी किशोरी सुंदर और बड़ी सर्वांग कोमल मधुर उसके भाव। वैसा उस समय में जगत में वो अपने इस विषय में, वर्ल्ड में या विश्व में कहो, विश्व सुंदरी कहो, केवल सुंदरी नहीं, सब प्रकार से राजा स्वयंवर कर राज्य। इसके लिए योग्यवर को हमको जरूरत है, कोई है तो वो आए, और जिसको वो पसंद हमारी लड़की करेगी उसको जयमाला दे देगी उसके साथ साथ। नर जी बाई चांस भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, उनके सामने वही पूरी आई और उसमें वो राजा और उसका राजभवन आया और वो वहीं पर पहुंचे। राजा ने कहा, जी हमारी कल बेटी का स्वयंवर है, आज जरा बेटी का हाथ देखिए जी, कैसे वर के साथ में शादी होगी और कैसे इसके लक्षण है और क्या होगा। तो नर जी गए, लड़की को देखा तो देखते रह गए, देखते ही रह गए। मेनका इससे अधिक सुंदरी, किंतु आज ऐसा रूप का आकर्षण भगवान की महामाया के वजह से हुआ, बस देखते रहे भूल गए, हाथ देखना भूल गए। महाराज जी ने कहा उसके पिता ने लड़की के, सब माया का है, रियलिटी कुछ नहीं है, भगवान ने माया के द्वारा जो इतना विश्व ब्रह्मांड को बना देते हैं एक मिनटों में ऐसा कर दिया। जैसे अरे आप भूल गए, इसका जरा हाथ तो देखिए। उन्होंने अपने हाथों में उसके हाथ लिए, बस जीवन इनका कृतार्थ हो गया मान, और देखने लगे, देखते रहे कि ये तो विश्व में जो सबसे श्रेष्ठ है इसे इसकी शादी होती है। और ऐसा मैंने संसार में जो सबसे रूपवान है, विद्वान है, बलवान है, गुणवान है, सब विषयों में जो टॉप का होगा उसी से इसकी शादी हुई है। तो संसार में तो सबसे टॉप का रूप किस में है, भगवान में है। और मेरा रूप तो अभी, अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं, इसलिए हमारा तो कोई रूप नहीं है। इसलिए यदि नारायण का रूप हमको मिल जाए तो आसानी से ये लड़की मिल जाएगी। अब देखो काम देखो, तो वहां परास्त किया और ये लड़की के लिए छटपटाने लगे किशोरी के, ये महामाया है। बस सोचने लगे क्या करो, बस वहां से लौट आए और वहीं पर ध्यानस्थ होकर के बैठ गए और बड़े करुण रूप में भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभो आप मुझे बचाइए और मेरी रक्षा कीजिए और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। नारायण वहीं को प्रकट हो गए, क्या बात हुई, किस लिए हमको बुलाया, प्रभु आज तक हमने आपकी उपासना की किंतु जीवन में कभी भी आपसे कुछ मांगा नहीं, बस एक तमन्ना है, आप हमारी उस तमन्ना को आशा को पूर्ण कर दें। कौन सी बड़ी भारी बात है तमन्ना के लिए, मैं तो भक्तों के लिए सर्वस्व अपना सब कुछ देता हूँ। प्रभु आप अपना रूप एक दिन के लिए उधार दे दीजिए, बस जब तक इस अंदर में मैं पहुँच जाता हूँ और लड़की हमको जयमाला दे देगी, फिर मैं लौटा, तुम्हारा कल्याण हो, जो तुम्हारा जैसे कल्याण होगा वही मैं करूँगा, तुम इसके लिए चिंता मत करो। तो वो समझ रहे हैं जी हमारा कल्याण होगा जी, वो रूप देंगे तो, और भगवान ने सोचा जैसे इसका यथार्थ में कैसे कल्याण होगा। वो वहाँ से लौट करके आ गए और स्वयंवर में बन ठन करके कपड़े अच्छे तरह से पहन करके और जैसे है मैंने अच्छा से अच्छा लग सकते हैं वैसा लेकर के, लड़की उधर से जयमाला लेकर के घूम रही है और ठीक उसके सामने में ये जाना चाहते हैं, सबको टॉप करके वहाँ पर जा रहे हैं। लज्जा नहीं है ना कुछ भी है, उस समय लज्जा भी खत्म हो जाती है, मर्यादा भी भंग हो जाती है, सब कुछ भूल करके लज्जा बेहाया हो करके लोगों के समाज में घृणित भी दिख रहा है, ये कैसा कर रहा है, क्या हो गया इसको, कुत्ते जैसा ये बन गया। वो आपके सामने जाते हैं और देखिए तो अपनी गर्दन लंबी करते हैं कि हमको ये पहना दे क्योंकि मैं तो सबसे सुंदर हूँ। भगवान ने कुछ अजीब लीला की, शंकर के दो जो दूत थे उनके साथ में घूम रहे थे, वाह वाह क्या क्या कहना क्या कहना कैसा रूप है वाह वाह हंस रहे क्या होती दिल लगी कर रहे हैं। इतने में जब नहीं डाली तो वो उधर में चली गई तो ये घूम करके उधर से उधर चले और सब लोगों के लाइन में आगे लग गए। फिर उधर से उन्होंने उसने देखा नहीं तो उधर गई तो उधर से आ वो सोच रही शंकर जी तो सुंदर हैं ये ठीक है किंतु ये आंख बंद करके किसकी आराधना करते हैं किसकी। अब सब समय 20 सर्प और ये क्या खोपड़ी इत्यादि और ऐसे सब धतूरा इत्यादि के साथ श्मशान भूमि में भी यद्यपि सबको वर देने में समर्थ है। ब्रह्मा जी कभी किसी के डर से भागते हैं कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। इंद्र इंद्र में बहुत से अवगुण हैं अहिल्या जैसी और सब माया में के चक्कर में पड़ करके इधर उधर डूबता है। बृहस्पति इत्यादि सबका नाम नाम लेकर के और रिजेक्ट कर रही है वो जो लड़की है सबको रिजेक्ट कर रही है। इतने में देखा गरुड़ पर बैठे हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नारद जी के उपास्य ही वहाँ पर उतरते ही लड़की का चेहरा खिल गया और बड़ी प्रसन्न होकर के हाथ में वरमाला लेकर और उनके गले में सब लोग ताकते रहे। देखो किंतु यह है सब माया है नहीं कुछ भगवान ने एकदम वहाँ पर ऐसा किया जब डाल दिया तो प्रभु ने मुस्कुराते हुए और उसको गद्दी पर लेकर के उसको गरुड़ पर अपनी गोदी में बैठा लिया और गरुड़ से कहा चलो बस उड़ करके बैकुंठ में चले गए। लोग देखते रहे नारद जी ने कहा ये देखो तो कैसा बदमाश सारा जीवन इसकी आराधना मैंने की कुछ नहीं मांगा आज ये मांगा और हमें रूप दिया कि नहीं और अपने आपस में उनसे आने की क्या जरूरत है वो नहीं आता तो हमारे गले में जरूर माला पड़ जाए और वो लड़की सहज रूप में हमको मिल जाए हमारे साथ में उन्होंने धोखा तो करे अरे देखो देखो कितना कैसा खूबसूरत तुम्हारा रूप है जरा देखो तो और ये कह करके वो हंसते हुए भाग जाते हैं। इतने में कहीं पानी था पानी में अपना रूप देखा देखा जे जो लंबे पूंछ वाले जो लंगूर होते हैं ना काला मुख वाले भगवान ने एकदम काला वो तो पहले वाला नारद जी का रूप तो ठीक था किंतु ये काला मुख रंगा हुआ आंखें धसी हुई और ये जब जैसा बंदर का मुख होता है काला मुख वैसा देखो तो इसकी चिठाई आगे नाथ न पीछे पगहा आगे नाथ माने बैल जो भी खूब खुखार हो तो उसको नाथ लगा देते हैं ऊंट जो होता है ना इतना बड़ा भारी नाथ लगा करके और उसको बांध घोड़े को पिछाड़ी और अगाड़ी बांधते हैं पीछे भी नहीं जा सके आगे भी नहीं तस समझ नहीं होगा बैठने नहीं देते बैठने से घोड़ा खराब हो जाएगा इसलिए पीछे से उसको बांध कर देते। तो ये जो है नारायण इसका आगे कोई नहीं और पीछे भी कोई नहीं किसी की बात सुनने वाला नहीं जो आता है मनमानी ये करता है इसको मैं अच्छी तरह से दंड दूंगा ये सब याद करेगा जिंदगी भर कहने तुमने हमको बंदर का मुख दिया और उसके लिए मैं विलाप करता हुआ चारों तरफ में रो रहा हूँ विरह मुझसे रहा नहीं जाता और तुमने हमारे साथ में ऐसे में छलना और दगा की हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई और बंदर का हमें रूप दे दिया अपना रूप नहीं जाओ तुम उसी स्त्री के लिए जिसको अभी ले गया उसी के लिए बिल बिलाएगा वन में जंगल में खोता हुआ ढूंढता हुआ रोएगा और बंदर वाले जो मुख हैं वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। जब शाप दिया उसी समय में भगवान प्रकट हो गया क्या शाप दिया कितने में माया हटाया देखा न वो स्वयंवर है न राजा है न पूरी है न कुछ भी नहीं नैश मेरी जी देखा क्या तुम्हें देखा जा रही ये तो भगवान ने हमारे अंदर में भी माना था इस अभिमान को दूर करने के लिए कृपा करके ऐसी उन्होंने व्यवस्था की वो मुस्कुराने लगे भगवान और साथ साथ में वही बैठी हुई थी लक्ष्मी जी कहा ये तो लक्ष्मी जी हैं हमारे लिए वहाँ पर गई थी और सुंदर का ये स्वांग रचा उनके चरणों में गिर कर प्रभु ने कहा जी नहीं तुम रो मत ये मैंने जान बूझ करके की कि जगत में ऐसी हमको करुणमयी लीला करनी है जो प्रत्येक आदमी हमारा लीला को स्मरण करके रोएगा जिसमें विलाप करेगी सीता उसमें मैं रोएंगे, ऐसी मैं लीला करूँगा और जगत के लोग हमारा इस लीला को सुन करके भव सागर को सहज ही पार हो जाएंगे। एक साथ में बहुत सारा काम, तुम्हारी माया को दूर करना, तुम्हारा अभिमान दूर करना, भक्ति का प्रचार करना, लोगों को ये भक्ति देना, इसलिए हमने जानबूझ करके ऐसा की। इसलिए तुम अब रो मत, घबराओ मत, ये हमारी इच्छा से लिया संभव। भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए राम के रूप में आए और लक्ष्मी जी वही सीता जी के रूप में आई और बंदरों भालुओं की सहायता से ही फिर अपने सीता जी को पाया। उनकी सब प्रतिज्ञाएं और जो ये था श्राप वो सब पूर्ण हो, एक बहुत से कारणों में से एक ये कारण, इसलिए रामचंद्र के रूप में ये सुनाया था। कभी नई चीज है ना?
नारद जी
वो बड़े चतुर हैं,
चतुर
जिस लोक में जाते हैं वैसे
करवाने, जैसे लोग भक्त होते हैं उनको ऐसा दिखला देते हैं। यदि देखा ये साधारण लोगों को नारायण की, यदि राम भक्तों को देखा तो राम की, और कृष्ण भक्तों को देखता था मैं यार राधे 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 कृष्ण राधे श्याम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो एकांतिक उनकी भक्ति है। कृष्ण जैसे लाख रूप धारण करके एक ही समय में कृष्ण राम द्वारकाधीश बरा कुर्मा लाख रूप धारण कर सकते हैं, लीलाएं कर सकते हैं एक समय में। ऐसे उनके भक्त लोग भी ऐसे होते हैं, एक ही साथ में राम के साथ में नारद हो जाएंगे, वो नारद कृष्ण के साथ में ये नारद, और लीलाओं में जैसा होगा वामन देव के साथ में स्वर्ग में रहने वाले नारायण नारद, ऐसे लाख रूप नारद रूप धारण करके उनके साथ। तो इसमें एक निश्चितता की हानि नहीं होता। उस जैसे बलदेव जी अनंग मंजरी बन करके कृष्ण की सेवा करते हैं उसमें, और सखा बन करके खूब बड़े भैया बन करके बात्सल्य रस और सेवक रूप में उनकी सेवा करते हैं, जिसमें उनकी एकांतिकता की हानि नहीं। यदि एक ही रूप में हम, रूप अलग नहीं हो, एक ही रूप में हम रुक्मिणी जी की भी सेवा कर रहे हैं, राधा जी की सेवा करते हैं, तो ये रसाभास होकर के ये भजन से चित्त
हमारा। जैसे हम लोग तो राधा कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, लेकिन जैसे घर में जैसे समझो कि जैसे जी रहे हैं रीति रिवाज है, तो जैसे अष्टमी थी आज माता की, तो वो पूजा करते हैं।
अभी तुम्हारी साधन भजन अभी आरम्भ नहीं हुआ है, इसलिए अभी संदेह है, अभी छोड़ नहीं पाती।
नहीं महाराज जी, छोड़ने की बात नहीं है, जैसे हम जाते हैं, जैसे नीचे उन्होंने वो बीजा होता है माता का, तो हम लोग जाते हैं उसको माता टेकते हैं और उसको प्रसाद भी लेते हैं, तो फिर वो उससे क्या हानि होती है?
हानि होगी, जरूर जरूर हानि होगी, इसलिए प्रसाद मत लिया करो। बस एकांतिक रूप में समझो, जय राधा जी का अंश का अंश का कला ये दुर्गा जी।
हाँ ये तो हम समझते हैं, यही समझते हैं कि जैसे,
और वो जो उपासना जो चल रही है वो अज्ञानियों की, वो लोग ठीक से नहीं समझते हैं और उस रूप में करते हैं धन के लिए पुत्र के लिए, इसके लिए जाते हमारी भक्ति बिगड़ जाएगी, इसलिए उसका प्रसाद भी ना लेकर के उसको प्रणाम कर लिया, बस अपराध ही है।
जैसे प्रसाद हमने ले के फिर अपना अपने तरफ से उसको अलग से
ले लो, बच्चों को दे दो और सबको खिला दो, तो जो भक्तिमान नहीं है साधारण गाय बल को जैसे खिलाते हैं वैसे, वो तो गाय बैल ही है जो भजन नहीं करते हैं, उनको भी तो थोड़ा सा जैसे भी एक तो कुछ तो हुआ।
नहीं महाराज जी, जैसे अब हमने अष्टमी नहीं करी, पहले तो करते थे, अभी नहीं करी हमने, व्रत भी नहीं रखा, तो फिर हमने आज जो है ना हलवा बना कर ये
भगवान जी को भोग लगा के
बना के गोपाल जी का भोग लगा कर सकते थे।
ठीक है,
मैंने भी ऐसे किया, गोपाल जी को भोग लगा के।
तुमने इसलिए किया कि लोग कहेंगे जैसे ये देखो दुर्गा अष्टमी नहीं पालन करती है, इस डर के मारे तुमने किया।
नहीं डर था, नहीं
इस रूप में यदि किया
वो तो किसी भी धर्म
ठाकुर जी को भोग दे करके सबको दे दिया उनका कल्याण।
जी ठाकुर जी का भोग लगा के हमने भी
किया। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक
है,
ठीक है, बहुत अच्छा है।
बता रहे की बोला गोपाल जी नहीं
बनाई,
हमने भी गोपाल जी को
गोपाल जी के लिए अलग अलग
बनाते हैं, हम लोग और घर में तो नहीं बनाते, हफ्ते में तो हम एक बार हलवा बनाती हूँ जरूर, लेकिन आज भी बना दिया।
मतलब कितना आराम कर लो है तो
हमारे पास है तो संसार और यदि उनसे प्रार्थना करें कि हमको ये संसार से हटा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित कर दें तो राधा जी बन करके आपको तब प्रेम देंगे। अभी इस रूप में आपको पुत्र परिवार धन प्रतिष्ठा ये सब चीजों में आपको ध्यान उसे निकलना बड़ा भारी मुश्किल 99 का फेर पड़ जाएगा निकल नहीं सकेगा। रावण कंस भस्मासुर जरासंध ये सब देवी की और शंकर की उपासना करें। देखो जो उनकी क्या गति हुई रावण की क्या गति हुई। और यदि कोई कृष्ण का या राम का भजन करेगा तो देवी की आराधना अपने आप हो जाती है। कोई भी भगवान का भक्त चाहे वो राम और कृष्ण है देवी सब समय उसकी रक्षा करती है। और जो देवी का भजन करता है और भगवान का नहीं करता तो उनको जो पुत्र इत्यादि देना है तो दे तो देंगी और कभी कभी उनका धन स्वीकार करके उनका ये खोपड़ी है उसको माला पहन लेती है। क्यों वो लोग पहले तो कहते हैं उनको माता माता जी माता माँ माँ कहते हैं और जब वो कहता है कि मैं शिव हम मैं शिव हो गया तो क्या हो जाएगी वो बामा बामा समझती ना बाम अंक में रहने वाले अपनी स्त्री बनाते हैं ऐसे दुष्ट अशुद्ध हो गए सभी ऐसे इसलिए वो देवी खड़कले करके उनको काट देती है। जैसे कुरुक्षेत्र में एक देवी है